From the conference center.
Salt Lake शहर के Temple Square के सम्मेलन केंद्र से हम आपके लिए लाते हैं यीशु मसीह के गिरजाघर के अंतिम दिनों के संतों के 184th अर्धवार्षिक महासम्मेलन का पुरोहिति की सभा. यह सभा दुनिया भर के हजारों में से रहे हैं. मिशनरी ट्रेनिंग सेंटर इन प्रोवो यूटा के गायक मंडली के द्वारा इस सभा का प्रदान किया जाएगा.
President Henry B. Eyring.
Henry B. Eyring गिरजाघर के प्रथम अध्यक्ष थे जो पहले सरकार आज रात इस प्रथम सभा का संचालन करेंगे.
Brethren, we welcome you to the priesthood session of the 184th Semiannual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
इसी में सिक्के के जगह अंतिम दिनों के संतों में 184th अर्धवार्षिक महासम्मेलन के पुरोहित सभा में प्रधान थॉमस एस मंसन जो इस सभा के नेतृत्व कर रहे हैं ने कहा कि मैं इस सभा का संचालन करूं.
This session will be provided by a priesthood choir from the Missionary Training Center in Provo, Utah, under the direction of Ryan Eggett and Elmo Keck, with Clay Christiansen at the organ. The choir will open this meeting by singing, "Rise Up, O Men of God." The invocation will then be offered by Elder Bruce A. Carlson of the 70.
God,
हमारे स्वर्ग पिता,
हम खुशी से भारी हैं कि हम इस कॉन्फ्रेंस में हैं। हम इस वक्त जो पुरोहित हमें मिला उसके विषय में बहुत विचार कर रहे हैं। हम आभारी हैं जो आपने बताया कि हम अपने पड़ोसियों से प्यार करें और उनकी सेवा में रहें और अपना जो मुख्य है उसको पालन पे चले। हम लोग आपका बहुत आभारी हैं प्रभु यीशु मसीह के और जो उन्होंने हमारे लिए किया है जो हमें इस कार्य को आगे बढ़ता है। हम बहुत आभारी हैं कि हम प्रॉफिट के सामने हैं और उसके साथ हैं और जो अपोजल्स उनके साथ हैं। हमें आशीष दे ताकि हम अपने कान को खोलें सुनने के लिए और देखें और अपने दिलों को खोले जाए हम सुन सकें ताकि हम आगे बढ़ सकें जैसे हमें बताया गया इस कॉन्फ्रेंस में। यीशु मसीह के नाम से आमीन।
The choir will now
एक मंडली अब हमें सुनाएंगे चिल्ड्रंस सॉन्ग बुक के प्रचारक संबंधी गीतों का संगठन। गाने के बाद हम एल्डर क्विंटन एल कुक जो 12 देवदूतों के प्रसाद के है का भाषण सुनेंगे। उनके बाद एल्डर क्रेग सी क्रिस्टेंसन जो 70 की अध्यक्षता की है से सुनेंगे। बिशप डीन एम डेविस जो बिशप की अध्यक्षता के दूसरे सलाहकार है हमें भाषण देंगे।
Thank you for that.
बहुत धन्यवाद जो ये गायन आप लोगों ने गाया. मेरे प्यारे भाइयों, आज शाम मेरी इच्छा है कि मैं फैसलों और चुनाव पर कुछ सलाह दूं. जब मैं सैन फ्रांसिस्को बे में एक जवान व्यक्ति था, हमारे कंपनी ने चार्ली ब्राउन हॉलिडे टीवी स्पेशल्स बनाने वाले कंपनी में नियम की कुछ सरकारी काम किया था. मैं चार्ल्स सॉल्स और उनके बहनों वाले दोस्त बन गए. पीनट्स, चार्ली ब्राउन, लूसी स्नूपी और दूसरे असर. मेरा एक पसंदीदा कॉमिक में लूसी भी था. जब मैं याद करता हूँ चार्ली ब्राउन की बेसबॉल को, वो खेलने वाले एक जरूरी खेल रहा था. लूसी दए फील्ड में थी रही और उसके ओर एक ऊंची बॉल मारी गई. विरोधी खिलाड़ी अपनी स्थान पर थे और ये खेल का आखिरी दौर था. अगर लूसी बॉल को पकड़ लेती तो वे खेल जीत जाती. अगर लूसी बॉल को पकड़ नहीं लेती, खिलाड़ी जीत जाते. एक कार्य जो सिर्फ कॉमिक में ही हो सकता. बुरे खिलाड़ी ने लूसी के घेर लिया था. जब बॉल नीचे आ रहा था, लूसी सोच रही थी, अगर मैंने बॉल को पकड़ लिया मेरे नाम हो, अगर नहीं होता. बॉल नहीं नीचे आया और जब से साथी आश्चर्य से देख रही थी, लूसी ने बॉल गिरा दिया. चार्ली ब्राउन ने अपने ग्लव को धरती पर धूल पर था. लूसी ने फिर अपने संतियों की ओर देखा, अपने हाथों से अपने कमरे में. किस तरह तुम इसे करते हो कि मैं बॉल पकड़ नहीं लूंगा, कि अगर देश की आंखों के नियम पर चिंता हो. ये उन कई बॉल्स में से एक था जो लूसी ने सालों भर में नहीं पकड़ा था और उसके पास हर समय. प्रधान थॉमस एस मॉनसन के देख रेख में दौरान उसने हमेशा सिखलाया है कि फैसला और आने वाली जीवन निर्भर होता है. उसने मुल्क के धर आज रात मेरा सलाह है कि बनाने बहाने बनाने छोड़ में. यीशु मसीह की सेवा करने की इज्जत है. आयज़ाया में हमें सिखलाया गया है, हमें बुरे को त्यागना और भले को करना करो. मैं विश्वास करता हूँ कि हमारे दिनों के लिए खास मायने रखता है. जब शैतान का प्रभाव इंसान के हृदय में कई नए और चतुराई के तरीकों से भर रही है कि हमारे चुनाव के फैसलों सदावनी और करने चाहिए. हमेशा फैसला और चीजों को लेकर इस जीवन द्वारा जीतते हैं. हम आज्ञाओं को पूरी तरह से मानना चाहिए और पवित्र वादों को निभाना चाहिए. कुछ जवान लोग कठिनाई है कि उनकी फैसला है कि वे मंदिर में शादी करें, परंतु मंदिर के लायक लोगों के साथ गतिविधियों में नहीं शामिल होते. सही में कि लोग गतिविधियों में सही हैं. तुम अविवाहित पुरुष जितने देर में तुम विवाह करोगे, सही उम्र और बड़े होने के बाद तुम उतना ही अविवेकित खुश रहोगे, परंतु तुम और ज्यादा पीड़े को महसूस करोगे. कुछ शादी नहीं करते जब तक कि वे अपने पढ़ाई पूरा ही कर लेते हैं, नौकरी नहीं मिल जाती. भले ही ये करना दुनिया की स्वीकार जानता है, ये फैसला में विश्वास नहीं देखता है. मेरे भौषिकता के सलाह की ये सिद्धांत के सही लायक नहीं है. अभी जल्द ही मैंने एक जवान युवा के आदमी को मिला. उसका फैसला था कि वे मिशन पर जाए, पढ़ाई करे, मंदिर में शादी करे और एक विश्वास खुशी से भरा परिवार में. मैं उसके फैसले से बहुत खुश हुआ, परंतु आगे वार्तालाप में पता चला कि उसके फैसला के अनुसार उसका संचालन और वह बनाया हुआ चुनाव हमेशा सही नहीं था. मैंने महसूस किया कि वे मिशन पर जरूर जाना चाहता था और गंभीर भयंकर के बर रहता था. उसने कार्य को अच्छी तरह करना नहीं सीखा था. वो स्कूल के सेमिनरी पढ़ाई को लेकर गंभीर नहीं थे. वो गिरजाघर जाता था, परंतु उसने मोमन की धर्मशास्त्र नहीं पढ़ा था. वो अपना ज्यादा समय वीडियो के खेल में और ज्यादा मीडिया के इस्तेमाल में. वो सोचता था कि मिशन पर जाना कहिए. जवान पुरुष, कृपा करके हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के लायक संचालन करता और गंभीरते से तैयार होकर प्रेरित करो। मेरा चिंता सिर्फ उस गंभीर फैसले पर नहीं, परंतु हम जरूरी चीजों पर भी हर दुनिया के सिद्धांतों करते हैं। या जरूरी है कि बहने बनाना बंद करने और सभी चुनाव को करें। एक आश्चर्य जरूरी उदाहरण आत्मा निर्भरता बारंबार और ज्ञान का हर इंटरनेट के इस्तेमाल का इसके इस्तेमाल से प्रचार करिए हो सकता है। प्रोहिति और जिम्मेदारी में मदद मिल सकता है। महान पूर्वजों को पवित्र मंदिर के दरबार विधि के लिए ढूंढिए और भी ज्यादा। अच्छाई की क्षमता महान है। हम यह भी जानते हैं कि वे बुराई की फैला सकती है। भाई रेंडल एल रीड ने पिछले महासम्मेलन में सहन शक्ति सिखाया था। इंटरनेट पर बातें करते हैं, तुम बेकार की चीजों में फंस सकते हो जो तुम्हारे समय के बर्बाद करेगा। सच्चाई के लिए रुकावटें और विरोधी सिर्फ इंटरनेट पर नहीं है, वो सभी स्थान पर है। वो सिर्फ युवा को नहीं बल्कि हम पर भी प्रभाव होती है। हमारे इर्गिर्द कभी ना खत्म होने वाली तरीका दिखलाता है मगे है। एल्डर डेविड ए बेडना ने अभी हाल ही सदस्यों को संभावित माध्यम के सूचना इस्तेमाल के लिए कहा है। एक जानना मानना इंसान जो अपने इच्छाओं को सुझाव को बतलाता है। आथा सी ब्रुक्स ने इस स्तर पर जोर दिया है। उसने स्मूथिक माध्यमों के इस्तेमाल पर टिप्पणी दिया है। हम अपनी जीवन के खुशी के बल को प्रभावित करते हैं, परंतु स्कूल या काम के मुश्किल समय का नहीं। जरूर वह तुम्हें बुरा महसूस करेगा अपने समय के कुछ भाग को खुशी में महसूस करेगी जैसे नहीं हो, और तुम्हें समय की भाग या दिखलावतें हुई दूसरे में तुम ज्यादा है खुश है। कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम बेकार के पागलपन, अच्छाई, मुसीबतों और हमेशा के जादों में फंस चुके हो। जब हम पागलपन से बहाकर निकलते हैं और सदावनी से अपने इर्द गिर्द की सच्चाई को देखते हैं, यहाँ बहुत कुछ नहीं होता है जो हमें हमारी आनंद तक के सच्चाई नेफ के ओर ले जाएगा। जब हम अपने गलत चुनाव के बहाने बनाते हैं, बड़े ही छोटे, जो पुनस्थापित सुसमाचार के साथ नहीं चलते, हम जरूरी आशीर्वादों और सुरक्षाओं को गवाह देता है कि हमेशा पाप या अपने मार्गदर्शन को खो देते हैं। मैं खास तौर पर पागलपन पर चिंता हूँ कि सभी नए चीजों के संग ढूंढ में हो। गिरजाघर में हम सभी इंसान के सच्चाई और ज्ञान के बातों और घटनाओं करते हैं, परंतु जब परंपरा ज्ञान और सामूहिक तरीकियों परमेश्वर के खुशियों होते हैं। जब देवदूत पॉल को एथेंस में मास पारात पर भाषण देने के निमंत्रण किया गया था, उसने कुछ दिमागी चाल और आज के सच्चाई ज्ञान को कमी दी। एक्स में हम पढ़ते हैं, सबसे एथिन्स और मुसाफिरों के लिए जो वो अपने समय को किसी और चीज में नहीं लगाए, परंतु चाहे बतलाए या कुछ नए चीजों सुने। पॉल का जोर था यीशु मसीह के पुनर्जीवन पर। जब भीड़ ने जाति के इस पुष्ण के उससे संदेश के पॉल ने एथेंस को बिना कोई सफलता के छोड़ दिया। डीन फेडरिक फरार ने उसने भेंट पर लिखा, पॉल ने एथेंस में गिरजाघर नहीं बनाया और एथेंस के बगल के गुजरे के बाद भी वे वहां कभी नहीं गया। मैं एल्डर डेलन हेचॉक्स के प्रेरणा भरे संदेश अच्छा 72 सबसे अच्छा के मतलब के चुनाव के जिम्मेदारी के तरीकों को देखता हूँ। कई चुनाव बुरे नहीं हैं, परंतु अगर वे हमारे पूरे समय ले लें और सुनी जाए नहीं करने दे, फिर वे खतरनाक हो सकते हैं। अच्छे गतिविधियों और परिणाम को भी अंदाज लेना चाहिए कि ये देखने के लिए कि क्या वे अच्छे परिणाम लाते हैं नहीं। मैं अपने पिता के साथ एक यादगार वार्तालाप किया था जाने जब जवान था। वो विश्वास नहीं करता था कि जवान लोग लंबे समय के लिए जरूरी परिणाम के तैयार की थे ये तैयारी कर रहे थे, जैसे काम के परिवारों के लिए प्रधान है, मतलब बारे शिक्षों और कार्य अनुभव के तैयारी। मेरे पिता की सिफारिश में हमेशा सबसे ऊंचे थी। उसने वे स्कूल के बारे बाहर के गतिविधियों को स्वीकार किया था, जैसे बहस और सिखाशनों के सरकार के पास उसके जरूरी परिणाम के साथ भी कुछ सीधा संबंध होंगे। वो मेरे फुटबॉल, बास्केटबॉल, बेसबॉल और ढूंढने वाले खेल को खेलने के समय के लेकर नाखुश था। वे उन खिलाड़ियों को जानता था जो शक्ति अंत तक खेल और तक को बढ़ाते और परंतु बदले और एक खेल पर शब्द कुछ ही समय तक ध्यान देना थे। इस अनुभव में मैंने एक चीज लूसी के बेसबॉल के खेल में पसंद करता हूं कि मेरे पिता चाहते थे कि मैं वैतस्ती नीति सीखा नहीं थी कि वे बॉल पकड़े नहीं। मैं ये बतलाना हूं कि मेरी माँ को खेल कुल पसंद थे, वो सिर्फ उस समय मेरे खेल को नहीं आती अगर वे असफल में होती। मैंने अपने पिता के सुझाव को मानने को फैसला किया और जब मैंने शिक्षा था कॉलेज में खेलकूद में भाग नहीं लिया। फिर मेरे हाई स्कूल के खोज में मुझे बताया कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के फुटबॉल डाल के कोच के और मार्लिन ऑल्सन के साथ 12 बजे का भीजन करने छोटे थे। तुम में से जो जवान है वो मार्लिन को नहीं जानते हुए, वो लोगन हाई स्कूल फुटबॉल दर का एक सबसे अच्छा खिलाड़ी था जहां मैं क्वार्टरबैक बनने वाले की तरह खेलता था और कई बार बॉल लेकर गोल की ओर दौड़ता। जब मार्लिन हाई स्कूल में था वे देखकर मुझसे सबसे था। 12 बजे के भोजन स्टैनफोर्ड कोच के साथ यूटा लोगन ब्लूबर्ड रेस्टोरेंट में था। हाथ मिलाने के बाद उसने दोबारा मुझसे आंग नहीं मिलाई। उसने सीधे मार्लिन से वादा किया और मुझसे अंधेरा कर दिया। भोजन के बाद पहले बार मेरे ओर मुड़ा परंतु मेरा नाम भूला गया था। उसने फिर मार्लिन को बतलाया, अगर तुम स्टैनफोर्ड स्कूल को छूटने खो और अपने मित्र को अपने साथ लाने चाहते हो, उसका मार्ग अच्छा था कि वो उसका साथ है। मेरा मकसद नहीं है कि मैं खेलकूद में भाग लेने वालों की हिम्मत तोड़ दूं या इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों का ये आने अच्छे जवान लोगों के खुशी के गतिविधि है। वो आगे आश्चर्य गतिविधि है जो सीएम बरारी और ज्ञान जरूरी है। जब अच्छाई तरह से इस्तेमाल किया जाता है वो हमारे जीवन को सुधार सकता है। फिर भी मैं सभी को लक्ष्य और हिम्मत देता हूँ, जवान और बुजुर्ग लक्ष्य और उद्देश्य के ज्यादा अच्छा सुधार को शिक्षा करें। ये जरूरी है कि हमेशा चुनाव को हमारी वादों के साथ सच्चाई से यीशु मसीह के सेवा करें। हमें इस लक्ष्य को किसी भी तरह को नहीं चाहिए। वो जीवन परमेश्वर को मिलने की तैयारी कर रहे हैं। हम खुश हमेशा लोग हैं, हम अच्छाई मिजाज के हैं। मेरे प्रार्थना है कि एक प्रोहिती की रखने वाले है वो काम को करिए जो स्वामी की सेवा करने वालों की महान करने में जरूरी है। सही चीजों में हम याद रखने हैं कि यीशु के गवाही में हिम्मत रखने से लोगों की सेलेस्टियल और टेरेस्ट्रियल राज्य के मूल प्रार्थना में से अलग किए की सकते हैं। हम चेतन हैं कि हम सेलेस्टियल की ओर अलग पाएंगे। उसके एक देवदूत की तरह प्रायश्चित और यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता के पवित्रता के सच्चाई के जरूरी गवाही देता हूँ यीशु मसीह के नाम से आमीन।
मेरे प्यारे भाइयों, प्रधान थॉमस जेस मंसन के व्यक्तिगत उदाहरण और पुर्तियों की सेवा के समय प्रेरणा प्राप्त होता है। अभी जल्द कई डीकन से पूछा गया, प्रधान मंसन में तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है? एक डीकन ने बताया कि इस तरह प्रधान मंसन जब वो बच्चा था वो अपने खिलौनों को जरूरतमंद दोस्तों को दिया। दूसरे ने कहा कि इस तरह प्रधान मंसन अपने वोट के विधवियों का ध्यान रखा। तीसरा ने बताया कि वो बहुत कम उम्र में एक देवदूत पे गया। और फिर जवान पुरुष ने कहा, वो चीज़ जो मुझे प्रधान मंसन के बारे में सबसे अच्छा लगता है उनकी गवाही। सभी में हम सब ने अपने भविष्यवक्ता के खास गवाही उदारकर्ता यीशु मसीह का और उसके आत्मा के प्रेरणा और हमेशा चलने के महसूस किया है। प्रधान मंसन चाहते हैं कि हम सुसमाचार में और ज़्यादा जवाई बिताए और हमारे व्यक्तिगत गवाही के लिए ढूंढो। याद करो, कुछ पहले सम्मेलन में उसने इसी मंच पर यह कहा, हमें शक्तिशाली रहने के लिए और बुरे दिशा में जाने से बचने के कोशिश करो। हमें खुद की गवाही होना चाहिए, चाहे तुम 12 हो या 112 को हो। भले ही मेरे आज रात का संदेश 12 या 112 का जो मार्गदर्शन देने का है, सिद्धांत सभी पर लागू होता है। प्रधान मंसन के कहने हुए पर मैं पूछता हूँ, क्या हम सब अपने लिए जानते हम किस समाचार सच्चा है? क्या हम आत्मिक निर्भरता से कह सकते हैं कि हमारे गवाही सच में खुद का है? प्रधान मंसन ने दोबारा बतलाया था, मैं बतलाता हूँ कि उद्धारकर्ता और उसके सुसमाचार की गवाही को जी सकती तुम्हें तुम्हारे इर्द गिर्द के पाप और बुरे से। अगर तुम्हारे पास भी ये गवाही नहीं है, जो कुछ भी हो या गवाही का प्राप्त करने के करो, तुम्हारे खुद की गवाही होना जरूरी है, क्योंकि गवाही कुछ देर से साथ देगा। खुद के लिए यह जानना कि यीशु मसीह के पुनर्स्थापित सुसमाचार सच्चा है, जीवन की अनुभव में सबसे महा और खुशी का हो सकता है। हम दूसरों के गवाही पर निर्भर होने से शुरुआत करते हैं, कहते हुए जैसे किशोर योद्धा ने किया था। हम इसमें संदेह नहीं करते कि हमारे माताएं भी ये बातें जानती हैं। सुसमाचार में हमेशा जीने के लिए यह अपने खुद के गवाही को प्राप्त करने और मजबूत करने से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है। हम भी आलमा के तरह बतलाना चाहिए। और हम ये कैसे मानते हो कि हम इन बातों में निश्चित हूँ? आलमा आगे बतलाया, सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने उन्हें बातों की जानकारी मुझे कराई है और मैं जानता हूँ कि वह आप सब सत्य है। आलमा के देखने के चाहते हूँ जो मेरे पिता को देखा है। आलमा की तरह निफाई ने भी खुद के लिए सच्चाई को जाना। निफाई वो जानना चाहता था कि उसके पिता को पता है, यह जानने के लिए बहुत ही उत्सुकता। यह वो था जिसकी उसे बहुत इच्छा थी। और मैंने प्रभु को पुकारा और सुनो, और मैंने जानता हूँ पवित्र आत्मा के शक्ति द्वारा। जब निफाई इन विचारों में खोया हुआ था, वो आत्मा में लीन हो गया था। बहुत ऊंचे पर्वत के देखा जहाँ उसे पूछा गया, तुम क्या चाहते हो? उसके जवाब सरल था, मैं उन बातों को देखना चाहते हूँ जिन्होंने मेरे पिता देखा। क्योंकि उसके बहुत विश्वास का था और उसका सावधानी से कार्य के बाद निफाई को महान अनुभवों के साथ आशीर्वाद दिया। उसे उद्धारकर्ता यीशु मसीह का पैदाइश, जीवन और क्रूस पर चढ़ने की गवाही को प्राप्त किया था। उसने मोमन के धर्मशास्त्र और अंतिम दिनों में सुसमाचार की प्रस्थापना को पहले की देखा था। निफाई की तरह भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ भी बहुत कम आयु का था जब उसका मन में गंभीर परचाई दिखाई दिया धार्मिक सच्चाई पर. जोसेफ के लिए वो समय महान कठिनाइयों का था, जाति के संदेशों को लेकर झगड़े और गलत. वो जानना चाहता था कि क्या किस कौन सा गिरजा सच्चा है. बाइबल के शब्दों के प्रेरिता उसने अपने जवाब को ढूंढने के लिए कार्य को किया. 1820 के गर्मी में एक सुंदर सब को सुबह को उसने जंगल में जाकर बीच घुटने पर होकर प्रार्थना किया. जोसेफ को परमेश्वर को पिता है और उसके पुत्र यीशु मसीह की महान दृष्टि प्राप्त हुई और खुद के लिए उससे सीखी. क्या तुम जोसेफ के अनुभव में वह उदाहरण देखते हैं हो तो तुम अपने गवाही को अपने और मजबूत करने के लिए सकते हो. जोसेफ ने धर्मशास्त्र को अपने हृदय को प्रभावित करने दिया. उसने उसे पर बहुत सोचा और अपने खुद के स्थिति में कम मिलाया. परिणाम में महापहला दृश्यता और पुनर्स्थापना के कार्य बाद में आया, जिसमें शामिल है 14 साल के किसान लड़का परमेश्वर से मांग सकता है और प्रार्थना के जवाब भी प्राप्त कर सकता है. हम हमेशा गिरजाघर के सदस्य को यह कहते हुए सुनते हैं कि उनके सुसमाचार का गवाही सबसे अनमोल चीज है. ये वो शांति है जो हम स्थिर रहने से हमेशा प्राप्त करते हैं. और जब हम सुसमाचार को सीखते, प्रार्थना करते और सुसमाचार में जीते हैं, यह पवित्र आत्मा की का एहसास है जो हमारे आत्माओं को गवाही देता है. कुछ लोग गवाही को इस तरह बतलाते हैं जैसे कि कुछ तुम्हारे पास है उसी तरह जैसे बत्ती की स्विच जल रही है. सही में एक गवाही पेड़ की तरह है जो फूल और फलने के लिए कई अवस्था का गुजरात है. जब तुम इस बड़े पेड़ के नीचे खड़े होगे, यह आश्चर्य होगा यह देखना कि हर एक छोटे से बीज से हुआ है. यह हमारे गवाही के साथ भी है. भले ही हमने एक ही धार्मिक अनुभव को शुरुआत किया हो, वो समय के साथ फलते हुए हमेशा के पोषण और हमेशा धार्मिक अनुभव के द्वारा आलमा ने वह गवाही को बदलाने पर समझाया था. उसने बीज को पेड़ बनने पर बतलाया था. अगर तुम स्थान दोगे उसने कहा, एक बीज तुम्हारे हृदय में बोया जाएगा. सुनो, अगर वो सच्चा या अच्छा बीज है और तुम्हें अपने आश्वासन के कारण उसे फेंक नहीं दिया जिसे कि तुम प्रभु की आत्मा के विरोध करो, तब वो तुम्हारी जाति के अंदर विकास करेगा और जब तुम्हें इस विकास को अनुभव होगा. ऐसे ही गवाही बढ़ता है पवित्र रोशनी व एहसास के साथ जो बतलाता है कि परमेश्वर की वाणी सच्चे है. फिर भी इसका एहसास आश्चर्य है या सिर्फ शुरुआत है. रेडवुड पेड़ के बोने के काम जैसे होता है जब धरती में से पहला पत्ता निकलता है. अगर हम हाल के धार्मिक प्रेरणा को अनदेखा और निकार करते हैं, अगर हम उसकी पालन पोषण हमेशा धर्मशास्त्र के सीखने और प्रार्थना और आत्मा के ज्यादा अनुभव को ढूंढते हैं, हमारे एहसास मर जाएगा और हमारे गवाही कम हो जाएगा. आलमा ने इस तरह कहा, लेकिन अगर तुमसे विकास की टुकराया है और उसके सच्ची की परवाह ना की, तब देखो उसमें जड़ ना होती और जब सूर्य का धूप तब जड़ ना होता होने से वो सूख के जाएगा. कई स्थितियों में हमारे गवाही पेड़ की तरह ही बढ़ेंगे. हमेशा विश्वास नहीं किया जा सकता है. हमारे हमेशा के देखभाल और परीक्षा के कार्य के परिणाम में आलमा ने वादा किया, हाँ, अगर विकास जब बढ़ाना आरंभ करता है तभी तुम्हें उसका पालन पोषण. अगर परीक्षण द्वारा विश्वास के साथ फल को प्राप्त करने के आशा से क्या तब उसमें जड़ पड़ेगी. मेरे खुद की जो गवाही शुरू हुआ जब मैंने मोमन में पाई हुई शिक्षा को सिखा और विचार किया है। पवित्र आत्मा ने मेरे आत्मा को गवाही दिया ताकि वो जो मैं पढ़ रहा था वो सच्चा था। जैसे प्रधान मंसूर ने सिखलाया था, जब हम जानते हैं कि मुख्य मोमन धर्मशास्त्र सच्चा है, तब फिर जानते हैं कि जोसेफ स्मिथ ने भी एक भविष्यवक्ता है और वो पुत्र यीशु मसीह को देखा है। ये भी जानते हैं कि अंतिम दिनों में जोसेफ स्मिथ के द्वारा सुसमाचार प्रस्तापित हुआ था, साथ में अरोनिक और मलकिस्तिक प्रतियों भी। उस दिन से मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा कई पवित्र अनुभवों को प्राप्त हुआ है। आत्मा के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि मैं जानता हूँ कि यह सब सच्चा है। मेरे जवान दोस्तों, अभी और आज समय ही हमें सीखने या जानने की सुसमाचार सच्चा है कि नहीं। हर एक के पास जरूरी कार्य हर है करना को या कार्य करने के लिए हमारे पास आत्मा निपाय और जीवन जोसेफ स्मिथ के जैसे विश्वास होना चाहिए।
And young Joseph Smith to obtain and develop our own.
जैसा विश्वास होना चाहिए हमारे खुद की गवाही को पाने और बदलने के लिए।
It is like a towering redwood. Yet even President Monson's testimony had to grow and develop over time. We can come to know for ourselves.
हम खुद को भी जान सकते हैं, जैसे President Monson ने कहा कि यीशु मसीह इस दुनिया का रिडीमर है और जोसेफ स्मिथ ने इस गॉस्पल को रिस्टोर करा है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम इस सब को जाने अपने यीशु मसीह के नाम से कहते हैं, आमीन।
My dear brethren,
मेरे प्यारे भाइयों, मैं प्रिस्टर को पसंद करता हूं और मैं तुम्हारे साथ हूं, खुश हूं। मैं बहुत आभारी हूं कि हम इस महान कार्य में साथ कर सकते हैं। हम प्रभावशाली समय पर रहते हैं। चमत्कारी शिक्षित विज्ञान और टेक्नोलॉजी की उन्नति ने कई लोगों के जीवन में सुधार लाया है, फिर भी यहाँ पर बहुत इंसान को झेलने और कष्ट उठाने की भी गवाह है। युद्ध और युद्ध के वफाओं के साथ साथ प्रकृति आपत्तियों में बढ़ती भाग आग भूमक भूकंप और बीमारियों के साथ दुनिया भर में जाती है। गिरजाघर के नेताओं परमेश्वर के बच्चों की अच्छाई के लिए सभी स्थान पर देखभाल कर रहे हैं, जब और जहां पर हो सके। गिरजाघर आप सुविधाओं को जिन्हें जरूरत है दिया है। उधार में पिछले नवंबर फिलीपींस के द्वीप में टाइफून ने पाया किया था, एक 5 दर्जे में महान टाइफून हयान ने में हुआ था। बहुत से लोग मर गए थे और बहुत से घर पे भी खो दिया था। गिरजाघर संधने तूफान खत्म होने के बाद तुरंत ही घटनों में उपलब्ध हो गया था। फिलीपींस ने रहने वाले गिरजाघर के सदस्यों ने अपने भाइयों और बहनों के साथ मिलकर मदद किया और भोजन पानी कपड़े और स्वस्थ विज्ञान चीज़ों को गिरजाघर के सदस्यों और घर को प्रदान किया था। गिरजाघर सब घरें जिनके घर नष्ट हो गए थे के सहारे देने के लिए स्थान पर गया था। स्थान अध्यक्षता और स्थानीय परिषद के नेताओं के नेतृत्व ने निर्देशन में कई जिन्होंने सब कुछ जो उनके पास था को दिया था। सरल संदेश गिरजाघर सदस्यों की मदद के लिए प्रदान किया गया था। उनके लकड़ी के फार्म को बांधने और घरों को बांधने के लिए या मुफ्त में नहीं था प्रदान किया गया था। सदस्यों को सिखलाया गया था कि फिर जरूरत के कर्मचारी की खुद और दूसरों के लिए प्रदान किए थे। गरीब और जरूरतमंदों का देखभाल करना सुसमाचार का सिद्धांत है। मूल में मुक्ति को योगना का एक खास जरूरत है। उसके मरणशील देखरेख से जोसेफ जोसेवा ने बतलाया, मेरे देश में दरिदार तो सदा पाया जाएगा, इसलिए मैं तुझे आज्ञा देता हूँ कि तू अपने देश में अपने दीन दरार भाइयों को अपना हाथ दिखलाकर स्वस्थ ध्यान दे। हमारे दिनों में गरीब और जिम्मेदारों की देखभाल करना गिरजाघर की जिम्मेदारी में चार में एक दिव्य नियुक्ति है। गरीब और ज़रूरतमंद की देखभाल करना मुक्ति के दोनों सांसारिक और धार्मिक कार्य में है। इसमें व्यक्तिगत गिरजाघर के सदस्य की सेवा शामिल है। गिरजाघर कल्याण भी सही तरह से करती है। प्रभु के योजना के एक जरूरी भाग है गरीब और जरूरतमंद की देखभाल करना। उपवास के नियम में प्रभु ने उपवास का नियम बनाया है और उपवास से भेंट होती है। उद्धारकर्ता के चेलों की तरह हमें भी व्यक्तिगत जिम्मेदारी दी गई है गरीब और ज़रूरतमंद की सेवा करने के लिए। गिरजाघर के विश्वासी सदस्य सभी स्थान पर हर महीने उपवास करते हैं 24 घंटे तब भोजन और पानी ना लेकर। ऐसा के शब्दों को सभी घरों में प्रार्थनाशिला से देखना और सिखलाना चाहिए। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता है वह यह है क्या नहीं कि अन्य से बनाए हुए दसों अंधेरा सहाने वालों का जुआ छोड़कर उनको जुड़ा लेना। क्या वह या नहीं है कि अपनी रोटी को भूखे को देना, कि कोई किसी नंगे को कपड़े देना और अपने जाति भाइयों के साथ को ना छुपाना। ऐसा ने फिर प्रभु के दिए हुए आश्चर्य आशीर्वाद के वादों में से कहा, उनके लिए जो उपवास के नियम को बत निभाना है, तब तेरा प्रकाश पाओ के फटने के समझ चमके और तू सिद्ध चंगा हो जाए। तब तू पुकारे और प्रभु उत्तर देगा, तू देख दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। उद्धारकर्ता से भूखे से सहायता करे और देन दुखियों को संतुष्ट करें। प्रभु तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे मदद करेगा। इस धर्मशास्त्र के लिए प्रधान थेरबिन ने कहा है, महान आशीर्वाद जो उपवास से रखने प्राप्त होता है सभी सदी में साफ तौर से बतलाया गया है और यह प्रभु अपने महान भविष्यवक्ता द्वारा बतलाता है, क्योंकि वो यहाँ उपवास है। अगर तू अजाया की किताब को 58 अध्याय को विश्लेषण करेगा तो तुम वहाँ जानोगे कि क्यों प्रभु चाहता है कि तू उपवास करे। प्रधान ली आगे कहता है, क्या तू कभी उस स्थिति में होना चाहते हो जहाँ तुम पुकारे और प्रभु जवाब ना दे? हम मुसीबतों में प्रार्थना करेंगे और वह हमारे साथ नहीं होगा। मुझे लगता है कि अब वह समय आ गया है कि अब जब हम इस मूल पर विचार करेंगे, क्योंकि इसी प्रकार के दिन होंगे आने वाले जीवन में जब हमें और ज़्यादा प्रभु की आशीर्वाद की ज़रूरत है। हमारे प्रिय भविष्यवक्ता प्रधान थॉमस एस मोचन ने इस सिद्धांत पर अपनी गवाही दी है। एक व्यक्तिगत रूप से अभिनव अनुभव किया गया है। उसने कहा, गिरजाघर के सभी सदस्य जिन्होंने जरूरतमंद की मदद किए अनुभव को कभी ना भूलेंगे या पछताओगे। मेहनत से सावधानी आत्मनिर्भर और दूसरों के साथ बांटे रहे। भाइयों, यीशु मसीह का गिरजाघर अंतिम दिनों के सदस्य वादा को बनाने वाले और आज्ञा का पालन करने वाले लोग रहेंगे। मैं किसी भी नियम किसी आज्ञा को नहीं जानता जो अगर सही ढंग से किया गया सरल है जो उपवास के नियम से ज़्यादा आशीर्वाद देता है। जब हम उपवास रखते हैं और सच्चे उपवास भेंट को भरते हैं, हम प्रभु के भंडार में उस समय को भोजन की कीमत को देते हैं। ये ज़रूरी है नहीं कि क्या हमें आशीर्वाद मिलेगा। उपवास का नियम सभी सदस्यों पर लागू है। जवान बच्चों को भी उपवास करना सिखलाया जा सकता है। एक समय के भोजन और फिर बाद में से शुरुआत किया जा सकता है, जबकि वे उपवास के नियम को समझ सकते हैं। पति पतियों, युवा और बच्चों को प्रार्थना के साथ शुरुआत करना चाहिए। अपने जीवन में आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए देना चाहिए, जबकि वो प्रभु के आशीर्वाद और उपवास के समय शक्ति को ढूंढते हो। उपवास का नियम उस समय पूरा होता है जब उपवास भेंट प्रभु के अभिकर्ता बिशप को भरा जाता है। बिशप, तुम वोट के कल्याण मार्ग दिखलाते हो, तुम्हें गरीब के लिए दिव्य ढूंढते को देखभाल करने का सहायक संस्था प्रधान और मलकेजिक पृष्ठ प्रसिद्ध नेताओं की मदद से तुम्हारे कार्य है कि सदस्यों को मदद करो। उनको मदद करने के लिए तुम्हें सदस्यों का शारीरिक धार्मिक जरूरत का देखभाल करना है। उपवास भेंट को सावधानी से इस्तेमाल करके करना है। जब तुम पृष्ठ के चाबियों को इस्तेमाल करोगे और गरीब और जरूरतमंद की मदद विवेक तरह से करोगे, तुम यह जानोगे कि उपवास भेंट का सही इस्तेमाल जवान में मदद करते हैं, ना कि जीवन शैली के लिए। एरोनिक पृष्ठ प्रसिद्ध प्रचाओ, तुम्हारे पास चाबियां हैं और भारी सद्धावता सिद्धांतों को देख रेख करने की। तुम बिशप और पृष्ठ सद्धावसों को उनके पृष्ठ के कार्य के लिए आगे देते हो, जबकि एरोनिक पृष्ठ को रखने वाले अपने पृष्ठ की बढ़ते हैं और सही गिरजाघर के सदस्य को यह अवसर प्रदान करते हैं। तुम तुरंत ही उपवास के वादा भरे आशीर्वादों को उनके बतलाते जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रधान मॉन्सन ने बतलाया है, जो बिशप अपने एरोनिक पृष्ठ प्रसिद्ध को उपवास भेंट को बटोरने में शामिल होने के लिए संगत करते हैं, इस पवित्र जिम्मेदारी में बहुत सफलता प्राप्त करते हैं। बिशप, याद रखो कि यह स्थिति अलग हो सकता है, एक स्थान से दूसरे और के देश से दूसरे में दरवाजे पर जाकर एरोस्टेट पृष्ठ परिषद सदस्यों को पैसा भरने का काम शायद वहां वो नहीं होते रहते हुए, फिर भी हम तुम्हें प्रस्थिरता से भविष्यवक्ता की सरला को करने को बतलाने हैं। उन प्रेरित कार्य को ढूंढो जहां तुम्हारे वोट पृष्ठ रखने वाले अपने पृष्ठ का दुर्ण कर सकते हैं उपवास भेंट करने के लिए। थर्निफाइन चैप्टर 20 अध्याय में फिर प्रकट हुआ है, इसलिए तुम्हें किस तरह का व्यक्ति होना चाहिए। उनसे जवाब दिया, मेरी तरह। जब हम अपने ऊपर मसीह के नाम को लेते हैं और उसके पीछे लेते हैं की कोशिश करते हैं, हम उसके परिचय को देखते हैं और उसी तरह हो जाते हैं। यह सभी कुछ में है, वह करता है, वह हम सबसे के पास आता है और हमें मदद करता है। उसका कार्य आसान है और उसका बोझ है हल्का है। मैं तुम सबको उद्धारकर्ता की तरह बनने का बतलाता हूँ, गरीब और जिम्मेदारों की देखभाल करके, उपवास के नियम का पूरी तरह से निर्भर करना और पूरी उपवास भेंट को भर करना। मैं ये विनम्रता से गवाही देता हूँ कि गरीब और जिम्मेदारों जरूरतमंदों की देखभाल जो अच्छी तरह से करें किसे देखभाल करते हैं। ये सब मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ, आमीन।
गायक मंडली और सभा अब खड़े होंगे और साथ में गाएंगे, We thank thee, O God, for a prophet. गीत के बाद हम प्रधान डीटर एफ उगडोव, जो प्रथम अध्यक्षता में दूसरे सलाहकार है, से सुनेंगे। फिर मुझे भाषण देने का सौभाग्य मिलेगा।
Yes, we thank our Heavenly Father for the prophet.
हम धन्यवाद देते हैं स्वर्ग पिता के प्रॉफिट के लिए और हम आभारी हैं जोश स्मिथ के और कैसे हम अपने प्रधान को प्यार करते हैं तुम्हें सुनना चाहिए कि प्रधान मॉनसन को प्रार्थना करना चाहिए कि सब भाइयों के लिए प्रार्थना करता है जो उसके तुम लोगों पर भरोसा है और जो पुरोहित के ऊपर विश्वास है जो इतने ढेर यहाँ पे एकत्रित हुए मेरे भाइयों वो हमारे उद्धारकर्ता की अंतिम रात था मनसालित में उस शाम के पहले जब वे खुद को सभी मानव जातों के चुनने के दर में दिया था जब वे हमसे अपने चेलों के साथ रोटी को तोड़ा उसने कुछ कहा जिससे उन्होंने हृदय में अचंभा आया हो गया और गहरे उदय से उसने कहा तुम में से एक मुझे दगाबाज हो गए चेलों ने उन्हें कहीं बात की सच्चाई नहीं जाननी चाहिए ना तो वे उधर उधर देखा ताकि उन्होंने कहा उंगली उठाने और कहे क्या वो ये है क्या वो हम हैं बल्कि वो बहुत उदास हुए और हर एक को पूछ ले कि प्रभु क्या वे मैं हूँ मैं ये सोच रहा हूँ कि हम क्या करते हैं उद्धारकर्ता ने हमसे ये सवाल किया होता क्या हम अपने आसपास वालों को देखते और खुद से कहते शायद ये भाई रामा या भरे में कह रहा है मैं हमेशा उस पर शक किया है ये अच्छा हुआ कि भाई रामा यह है उसने ये सुनने की जरूरत थी ये क्या हम या उसके चेलों की तरह खुद से है मरते के क्या वो मैं हूँ इस सरल शब्दों में प्रभु क्या वो मैं हूँ मैं ज्ञान के शुरुआत और व्यक्ति की संपूर्ण और आनंद बदलाव है एक समय एक आदमी था जिसने शाम के समय अपने पड़ोस में टहलना पसंद था उसके अपने पड़ोसी के घर के सामने के गुजरा खास पसंद था इस पड़ोसी के आंगन बहुत साफ सुथरा रहता था फूल हमेशा खिलते थे पेड़ स्वस्थ और छाव देता वाला ऐसा दिखता था कि पड़ोसी भरपूर कोशिश करता था कि उसका आंगन सुधर रहे मगर एक दिन जब वे आदमी अपने पड़ोसी के घर सामने गुजर रहा था उससे सुंदर आंगन के बीच में एक भारी पीली रंग की दयालिया के जंगली पेड़ दिखा ये उसका बहुत व्यक्ति लगा उसने पड़ोसी ने इसके क्यों नहीं उखाड़ा था क्या उसने देखा नहीं था क्या उसने नहीं जानता था कि उसके बीच वहीं पर और जंगली पेड़ को ना उखाड़ा दिया ये अकेले डालियों के सामने की उसके तकलीफ देता है और वह कुछ करना चाहता था कि इसके बारे में क्या वो उस सिर्फ उखाड़ कर फेंक सकता है या उसे पेड़ मार के वाले दवाइयों पे मार सकता है शायद अगर वो रात इस समय जाए तो वो क्या चुपके से उस उखाड़ सकता है घर लौटते समय ये सब बातें कि उसने मन भरी हो गई थी वे अपने घर में गया और अपने खुद के आंगन को देखा जो कि कई पीली डालियों के फूलों से भरे थे क्या ये कहानी हमारे उद्धारकर्ता के शब्द याद दिलाती है तुम क्यों अपनी भाई के आँख के टीके में देखते हो और अपने आँखों के लकड़ी तुझे नहीं सूझता पहले अपनी आँखों में से लकड़ी निकालने लो तब अपने भाई के आँखों से लकड़ी की टीके की कहानी शायद तुम हमारे खेत की देख सकने की क्षमता की तरह है मैं नहीं जानता हूँ कि कैसे इतने सच्चाई तरह की लोगों की मुसीबतों को जानने हैं कि सुझाव बातें लेते हैं जबकि हमारे कई साल पहले सुसमाचार आई कि आदमी के बारे में जो विश्वास करते हैं था कि अगर वो अपने चेहरे पर नींबू के रस लगा ले तब वो कैमरे के लिए गायब हो सकता है, इसलिए उसने अपने पूरे चेहरे पर नींबू का रस लगा दिया। बाहर गया और दो बैंकों में डाका डाला। बहुत देर नहीं हुआ कि उसके पकड़ लिया गया जब उसके शाम की टीवी के समाचार में उसका तस्वीर आया। जब पुलिस ने वालों ने आदमी के कमरे से ली ताकि वीडियो ले, उसने खुद के मगर मेरे चेहरे पर नींबू का रस था, उसने कहा। जब कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट के एक व्यक्ति ने ये कहानी सुना, उसने दिलचस्पी हुई कि एक आदमी अपने असमर्थता के नहीं पहचान पाया, ये जानने के लिए कि ये एक आम समस्या है और अनुसंधाताओं के कॉलेज की व्यक्तियों को जीवन के खोज योग्यता से छोड़ और करते हैं। ये आदियों कई और तरीकों के किए गया है, हर बार यही परिणाम पर आता है। हम में से कई लोग कठिनाई का सामना करते हैं और आपके सही मायने में देखने में और कामयाब लोग भी अपने खेत के योगदान की पढ़ा कर बदलाते हैं और औरों के योगदान के कहते हैं। उतना जरूरी नहीं है बढ़ा कर कहना कि हम कितना अच्छा गाती चला सकते हैं, कितनी दूर गोल्फ की गेंद को उड़ा सकते हैं, मगर जब हम विश्वास करना शुरू कर देते हैं कि घर काम और गिरजाघर की हमारे योगदान जितना हम करते हैं से बड़ा है, तब हम अपने आप को अंधा कर देते हैं आशीर्वादों को मौकों के देने के जरिए कि हम खुद को बढ़ाइयों की तरीकों के प्रगति दिला सकते हैं। मेरा एक प्रचन वाला एक वार्ड में रहता था जिसका दर्जा गिरजाघर में ऊंचा था। संभाव में तक लगभग सब लोग आते थे। होम टीचिंग के प्रशिक्षित ज्यादा थे। प्राथमिक के बच्चे हमेशा अच्छे खेल के रहते थे। वार्ड मेंबर भोजन के समय बढ़िया भोजन आता था जो कि सब घर के फर्श पर बहुत कम करते थे। मेरा दोस्त और उसके पत्नी को बाद में मिशन पर जाना पड़ा। जब वे 3 साल बाद लौटे, ये धरपति असंभव में थे कि जब वे बाहर सेवा प्रदान कर रहे थे उसके वार्ड में 11 धर्मपतियों का तलाक हो चुका था। भले ही वार्ड के पास हर भरी इशार था विश्वास और शक्ति का, उनके दिलों और संदेशों के जीवनों में कुछ अशुभ हो रहा था। और तारीफ की बात यह है कि ये स्थिति नहीं थी। ऐसे बुरे और अक्सर बहकर के चीजों होते हैं जब गिरजाघर के सदस्य सुसमाचार के सिद्धांतों के दूर हो जाते हैं। बाहर से वे यीशु मसीह के चलने लगेंगे मगर उनके दिलों के अंदर उन्होंने उद्धारकर्ता और उनके शिक्षकों को अलग कर दिया है। वे धीरे धीरे धार्मिक चीजों से दूर हो गए हैं और दुनिया के चीजों के करीब हो गए हैं। जो पुरोहित रखवाले कभी योग्य थे खुद ही बतलाते रहते हैं कि गिरजाघर अच्छा है महिलाओं और बच्चों के लिए मगर उनके लिए नहीं। ये कुछ लोग संतुष्ट है कि उनके पास समय नहीं है। ये परिस्थितियों उन्हें दैनिक श्रद्धा और सेवा से मुक्त करती है जिससे वो आत्मा के करीब रहेंगे। इस योग में जहां लोग अपने आप को सही संभित करते हैं और खुद के बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, ऐसा हो जाता है कि बहने बना के क्योंकि परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करेंगे, धर्मशास्त्र अध्ययन बंद में क्यों करेंगे, गिरजाघर संभव और घरेलू शाम संबतों से दूर रहें, ये ईमानदारी से दसवां हिस्सा और बेटना ना भरेंगे। भाइयों, क्या तुम अपने दिलों में झांक के और सरल सवाल पूछो, प्रभु क्या वो मैं हूं? क्या तुम थोड़ा भी भौतिक गए हो आशीष भरे परमेश्वर के सुसमाचार से जो तुम्हारे भरोसे में सौंपा गया है? क्या तुम्हें से संसार की परमेश्वर को मौका दिया कि तुम्हारे बूंदी से आंधी हुई ताकि मसीह के विशाल सुसमाचार को पढ़ सके? मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, खुद से पूछो, मेरे ध्यान कहाँ है? क्या तुम्हारा हृदय इस संसार के सुविधा वाले चीजों में टिका है? ये पुरुषमी यीशु मसीह का केंद्र है, क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन होगा वहीं तुम्हारा दिल भी होगा। क्या परमेश्वर की आत्मा का गहरा प्रभाव तुम पर होता है? क्या तुम परमेश्वर और तुम्हारे भाई बंधुओं के प्रेम में जात पकड़ के हुए और नेव डाले हुए हो? क्या तुम परिपथ समय और सच्चाई के गुम लगते हो अपने वैवाहिक जीवन और परिवार में? क्या तुम अपने सब कुछ यीशु मसीह के पुनस्थापित सुसमाचार के लक्ष्य को पाने और जीने के चेतावनी और लंबाई और अच्छाई और करते हो? भाइयों, अगर ये तुम्हारी इच्छा है कि तुम मसीह जैसा गुणों को लाओ, जैसे कि विश्वास, सर्गुण, ज्ञान, स्थानों, शांति, भाई से दयालु, ईश्वरदार, दयालु, विनम्रता, स्वर्ग के पिता तुम्हें अपने हाथों से औजार बनाए गई लोगों को उधार दिलाने के लिए। भाइयों, हम में से कोई नहीं बदलाना चाहता है कि सच्चाई राह से भटक रहे हैं। अक्सर हम अपने अंदर नहीं देखना चाहते हैं कि अपने कमजोरियों, पाबंदियों और डर के सामना नहीं कर सकते। इस कारण जब भी हम अपने जीवन को निरीक्षण करते हैं, हम ऐसा एक फिल्टर के मदद की करते हैं जहां तरफदारी बनानों और कहानियों उनसे खुद के बतलाता है, मगर अपने आप को साफ रोक से देखना हमारे धार्मिक बनाती है और दूसरे के लिए है जरूरी। अगर हमारे कमजोरियों और दूसरी परख में रह जाए, तब उद्धारकर्ता का मुक्ति देने वालों शक्ति उन्हें बदल नहीं करेगी और मजबूत नहीं होगी। प्रतिकूल तरीके से हमारा अंधेरा हमारे मानव कमजोरी के प्रति भी हमें दिव्य स्वभाव के प्रति हमें संदेह करता है, जो कि हमारे पिता चाहते हैं कि हमारा अंदर रहे। तब हम कैसे परमेश्वर के शुद्ध रोशनी के सच्चाई को अपने हृदयों पर चमकाएंगे और खुद को देखेंगे जैसे वो हमें देखता है? मैं सुझाव देता हूं कि हम पवित्र धर्मशास्त्रों और भाषणों जो कॉन्फ्रेंस में दिया गए थे, अब ये उपयोगी शिक्षा है जो हमें देख सकते हैं कि खुद निराशन करेंगे लिए। जब तुम प्राचीन और अभी के भविष्यवक्ताओं के संबंधों को सुनते हैं या पढ़ते हो, यह मत सोचो कि कैसे ये संबंध किसी और पर लागू होते हैं और सवाल पहुंचेगा। हमें अपने आनंद पिता से टूटते हृदय और शिक्षा पाने वाले मांगने से होगा। हमारे अंदर सीखे और बलिदान लाने की इच्छा रहने चाहिए और हम अपने कितना कुछ पाते हैं हमारा स्वर्ग के पिता की जैसे जीवन जीना चाहिए। वो जो सीखना है और बदलाना नहीं चाहते नहीं सीखेंगे, और जो बदलने और हो सकते हैं और सोचना लगते हैं कि गिरजाघर में है, पर जो लोग बदल कर और प्रगति करना चाहते हैं, जो उदारकर्ता से सीखना चाहते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं, जो खुद को छोड़कर छोटे बच्चे की तरह विनम्र कर लेते हैं और वो हमारे स्वर्ग पिता के अपने सोच और कमजोर को मिलना चाहते हैं, वो उद्धारकर्ता के प्रश्चित और चमत्कार को अनुभव करेंगे। वो जरूर परमेश्वर के बढ़िया आत्मा को महसूस करेंगे। उनके एक विनित और अधिकार राहत मिलेगा। वे यीशु मसीह के सच्चे चेला बनेंगे की इच्छा और खेल के अनुसार मिलेगा। मेरे जीवन में मुझे मौका मिला है कि दुनिया के कुछ सबसे मेहनती और बुद्धिमान पुरुष और महिलाओं को जाने का। जब मैं छोटा था, मुझे प्रसन्नता मिलती थी उन्हों देख के जो पढ़े लिखे संपन्न सफल और जिन्हें दुनिया भर के प्रशंसा मिलता था। मगर इन वर्षों में मैंने ये जाना कि मुझे ज्यादा खुशी मिलती है आश्चर्यजनक और अभिभारी लोगों के देखकर जो मैं अच्छे बिना चल के होते हैं। क्या सुसमाचार अच्छाई के बारे में नहीं, क्या ये समाचार हमें देता है? यहाँ से अच्छाई खबर है और ये हमारे मदद करता है कि अच्छाई बनने के लिए। देवदूत जेम्स के बोल आज हम पर लागू होता है। परमेश्वर अभिमान्यु को विरोध करता है पर देने पर अनुरोग करता है। प्रभु के सामने देन बनो और वो तुम पे ऊंचे तक पहुंचाएगा। भाइयों, हमें अपने घमंड के बगल करना है। हमें दिखावे को नजरदास कर देना है और विनम्रता से पूछना है, प्रभु क्या वो मैं हूँ? अगर जवाब होगा हाँ मेरे पुत्र, कुछ चीजों में सुधार लानी है, वे चीजों जिसमें मैं तुम्हारे मदद कर सकता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम इस जवान विनम्रता जवाब में विनम्रता पूर्वक अपने पापों को खामियों को स्वीकार करेंगे और अपने रवैयों को बदलेंगे। हम इस समय से आगे पूरी कोशिश करें उद्धारकर्ता की आशीष भरी रास्ते पर सिद्धार्थ से चलने के लिए, क्योंकि खुद की स्पष्टता और देखना ज्ञान का श्रुति है। जब हम आशय करेंगे, हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर हमारे हाथ पकड़ लेगा हमारे झाड़ पर। प्रभु हमें बलिवान बनाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, एक पहला कदम इस विशाल और संपूर्ण चेलापन के मार्ग पर चलना का शुरुआत होता है कि वो सरल सवाल पूछने से, प्रभु क्या वो मैं हूँ? इस मैं गवाही देता हूँ और अपना आशीर्वाद छोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
I am grateful to be gathered with the priesthood.
मैं परमेश्वर के पुत्र से साथ इकट्ठा होने के लिए खुश हूँ जो दुनिया भर में है। मैं तुम्हारे विश्वास, तुम्हारे सेवा और तुम्हारे प्रार्थना की हबारी हूँ। मेरे संदेश की रात का रौनिक पुरोहित पर है। यह हम सब के लिए है जो प्रभु के वादे को पूरा होने में मदद करते हैं, जो धर्मशास्त्र में बतलाए हुए को रखते हैं कम पुरोहित। इसे तैयारी की पुरोहित कहा जाता है। यह वह महान तैयारी है जिसके बारे में मैं आज रात को बातें करूंगा। प्रभु के योगों में उसके कार्य तैयारियों से भरी हुई है। उसने हमारे लिए धरती को तैयार किया है मरणशील के परिणाम और अवसरों को अनुभव करने के लिए। जबकि हम यहाँ हैं, हम उसमें है जिसे धर्मशास्त्र में तैयारी का समय कहा जाता है। भविष्यवक्ता आलमा ने आनंद जीवन के तैयारी को जरूरी महत्व को बतलाया, जहां हमेशा हम परिवारों को तरह परमेश्वर को पिता है जो पिता है और यीशु मसीह का साथ रहेगा। उसने तैयारी के जरूरत को इस तरह बतलाया और हम देखते हैं इस मनुष्य की मृत्यु होती है या वह मृत्यु जिसकी विषय में अमिलक ने कहा था जो ऐश्वरिक मृत्यु है फिर भी मनुष्य को समय दिया गया था जिसमें वो पश्चाताप का कर सकता है इसलिए वो जीवन परीक्षा कल स्थिति में होता है और ये समय परमेश्वर से मिलने और तैयारी करने के लिए होता है उस आनंद स्थिति की तैयारी का समय होता है जिसके विषय में हम लोगों का जो कि मेरे और के पुनर्जीवित होने के पश्चात आता है मरणशीलता में हमें जो समय जीने के मिला है वो परमेश्वर मिलने की तैयारी का समय है आरोनिक प्रयत्नों में हमने जो समय सेवा करने के लिए प्रदान किया गया है वो अवसर है हमारे लिए दूसरों को ज़रूर मदद करने को सिखलाने के लिए मेरा संदेश दोनों के लिए है जिन्हें प्रभु हमारे तैयारी के मदद के लिए भेजता और आरोनिक प्रयत्नों को रखते हैं मैं पिताओं से बातें करता हूँ मैं बिशप से बातें करता हूँ और मैं उसे बातें करता हूँ जो मलकिज़ेदेक पुरोहितों के आए जिन्हें जवान पुरुष के साथियों और शिक्षाओं की तरह बनाया गया है जो पुरोहितों तैयारी में है मैं तुम्हें से कई के लिए इज्जत और आभार से बातें करता हूँ दुनिया भर और सुनने और प्रदान पढ़ने वाले को ले आए मैंने गलत होगा अगर मैं अपने युवा के शका प्रधान और बिशप की बातें नहीं करूं। मैं 12 की उम्र में एक डीकन बना यूनाइटेड स्टेट्स के पूरा विभाग के एक छोटे से शक्का में शक्का इतना छोटा था कि मेरे बड़े भाई और मैं सिर्फ आरोनिक पुरोहितों का रखने वाले थे मेरे पिता के बाद जो शिक्षा प्रधान था ने आधे उम्र के आदमी को गिरजाघर में आमंत्रित किया उस नई परिवर्तित को आरोनिक पुरोहितों प्राप्त हुआ और उसके साथ एक नियुक्ति आरोनिक पुरोहितों को देखभाल करने के लिए मुझे कार्य याद नहीं है परंतु मुझे वह एहसास याद है कि पुरोहितों शक्ति ने हमें मदद किया था करने को जो मैं बाद में प्रभु के कहे को सीखा था कि हमें वो करना है हमारे पापों से क्षमा के लिए और इसे उसको मिलने की तैयारी करो जबकि मैं उस कार्य को अब याद करता हूँ मैं उस शक्का प्रदान के लिए आभार महसूस करता हूँ जिसने मैं परिवर्तित के मदद किया था प्रभु के दोनों बच्चों के तैयार करने के लिए जो किसी दिन बिशप से सकते हैं गरीब और ज़रूरतमंद की देखभाल को करने के लिए और पुरोहिति की तैयारी करने वाले को मैं उस समय भी डीकन था जब हमारे परिवार यूटा के एक बड़े वार्ड में गए वो पहली बार था जब मैंने आरोनिक पुरोहितों के प्रसाद की पूरी शक्ति को महसूस किया और बाद में मैंने पहली बार प्रसाद के संचालन बिशप के शक्ति और आशीर्वाद को महसूस किया था बिशप ने मुझे प्रसाद के पहले से सहयोगी की तरह नियुक्त किया था मुझे याद है कि उसने प्रसाद को खुद ही पढ़ाया था वो सक्रियता और जहां और दूसरे गणवान आदमी का साथ जिन्हें वे अपने सिखलाने के लिए नियुक्ति कर सकता था वो मुझे अपने कुर्सी के बगल में देने और बतलाया मैं उनके कंधे के बगल से देख सकते थे और पढ़ता वो अपने घुटने पर रखे छोटे से चमड़े के बाइंडर में सावधानी से लिखे विवरण को कभी कभी नीचे देखता और ज्यादा इस्तेमाल और वो चैन धर्मशास्त्र को दूसरे घुटने पर खोल रखा था मैं हमेशा याद रखूंगा कि प्रभु की किस तरह पुरोहितों की रखने वाले की तैयारी के लिए सावधानी से साथियों की नियुक्ति करता है मेरे बिशप का पास शक्तिशाली सलाहकार थे और कई कार्यों से मैं समझ नहीं पता फिर एक बार से ज्यादा उसने मुझे घर पर बुलाया और कहा हाँ मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथी के तरह कुछ बैंड के लिए चलो एक बार वो मुझे अपने साथ एक विधवा के घर ले जाना चाहता था और जो अकेले रहती थी और बिना भोजन के जब हम घर जा रहा था उसने कर को रोक दिया अपने धर्मशास्त्र को खोला और मुझे बतलाया कि उसने क्यों उस विधवा को इस तरह सम्मान दिया था। दूसरा बहन था उस आदमी को जो गिरजाघर बहुत समय से नहीं आया था। मेरे बिशप ने उसे वापस बुलाया। मैंने उनके प्रेम के अप्रेमी और जिद्दी दुश्मन की ओर देखा। एक दूसरे अवसर पर हमें एक घर भेंट किया जहां वो छोटी लड़कियों को हम दरवाजे पर मिलने के लिए उनके शराबी माता पिता द्वारा भेजे गए थे। छोटे लड़कियों ने स्क्रीन के दरवाजे से कहा उनके माता पिता सो रहे हैं। बिशप उसने बातें करता रहा, मुस्कुराते और उनके अच्छाइयों का गुणगान करते हुए, जो मुझे 10 मिनट से ज्यादा लगा। जब हम से घर से जा रहा था, उसने धीरे से कहा, ये एक अच्छा बैंड है। वह छोटी लड़कियों हमारे बैंड को कभी नहीं भूलेंगी। दो आशीर्वाद जो बुजुर्ग पुरोहितों के साथ से देखते हैं, वह है विश्वास और देखभाल के उदाहरण। मैंने वो देखा था जब मेरे पुत्र को घरेलू शिक्षण साथी दिया गया था, जिसके पास उसे भी ज्यादा पुरोहितों का अनुभव था। उसका बुजुर्ग साथी दो बार मिशन प्रदान था और दूसरे नातव स्थानों पर भी सेवा कर चुका था। उनके नियुक्ति हुए परिवार को बेंच से पहले उस अनुभवी पुरोहितों ने नेता ने पहले ही हमारे घर पर मेरे पुत्र को बेंच करने का था। फिर उसने मेरा पुत्र के कुछ ऐसा कहा, मुझे लगता है कि हमें उस वह शिक्षण लेना चाहिए जो इस परिवार को उन्हें पश्चाताप की पुकार की तरह सुनाई दे। मुझे लगता है कि वह संदेश को मुझे से ज्यादा तुम से सुना चाहेंगे, इसलिए तुम क्या सोचते हो? मैं उस खुशी के पल को अभी भी महसूस कर सकता हूँ जब मेरे पुत्र ने विश्वास को स्वीकार किया था। ये बिना योजना और तैयारी से बिशप ने उनको साथी की तरह साथी नहीं किया था, यह सावधानी से तैयारी के साथ किया गया था, ताकि वो बुजुर्ग स्थितियों साथियों ने उस परिवार के एहसास को महसूस किया था, वह सिखला सके। उसे प्रेरणा प्राप्त हुआ था कि वह पीछे हट जाए। एक अनादि युवा में परमेश्वर के बच्चों को पश्चाताप और सुरक्षा की नियुक्ति को करने के लिए मुझे उनके बैंड का परिणाम नहीं पता है, परंतु मुझे पता है कि एक बिशप, एक मकेजिक पुरोहित रखने वाला और प्रभु एक पुरुष को पुरोहित के लिए तैयारी कर रहने थे और किसी दिन खुद के बिशप की तरह। आप पुरोहित तैयारी की इस तरह के सफलता को तुम जमते हो जो तुम्हें अपने खुद को जीवन में देखा और अनुभव किया है। तुम ऐसे बिशप साथियों और माता पिताओं को जानते हो और खुद भी हो। तुम्हें अपने पुरोहिती को कार्य के तैयारी में प्रभु की आशीर्वाद को देखा है, जो वो जानता है कि तुम्हें पहले ही प्राप्त है। हम सब पुरोहितों की रखने वाले के पास कार्य है दूसरों के प्रभु तक लाने में मदद के लिए। हम धर्म विधि को सिखलाने में शब्दों से ज्यादा शक्तिशाली हमें धर्म विधि से जीने वाले उदाहरण हैं। हमारे पुरोहित की सेवा बहुत जरूरी है लोगों को मसीह तक के आने लिए आमंत्रित करना, विश्वास, पश्चाताप, बपतिस्मा और पवित्र आत्मा को प्राप्त करने। प्रधान मानसून ने इसलिए उन सभी धर्म सिद्धांतों पर प्रेरित भरे बाशों को दिया है, परंतु मुझे पता है उसने जो गिरजाघर के लोगों और प्रचार और दोस्तों को साथ किया। इसलिए धर्मशास्त्र बहुत जरूरी है पुरोहिती की तैयारी करने में, वह उदाहरण से भरे हुए है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आलमा को देवदूत के आज्ञा का पालन करते हुए और फिर अमनाया के दस्त लोगों जल्द से दोबारा सिखलाते हुए महसूस कर सकते हो। मैं जेल में दंड को महसूस कर सकता हूँ जब भविष्यवक्ता जोसेफ को परमेश्वर द्वारा बतलाया गया था। इन धर्मशास्त्र में चित्रों एक पिता के एक बिशप या एक बुजुर्ग घरेलू शिक्षक साथी जो दिखलाता है कि वो जवान पूरे तो कर रखने वाले पर विश्वास करता है। मेरे पिता को एक बार 12 के परिषद के एक सदस्य ने साइंस और जाति पर एक छोटी लेख लिखने को कहा गया था। मुझे अभी भी याद है कुछ उसका लिखा हुआ लेख मुझे देना और कहना ये मुझे 12 को देने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ो, तुम जानोगे कि क्या ये सही है। वो मुझसे 33 साल बड़ा था। मैं अभी भी एक महान पिता और पुरोहितिव आदमी के विश्वास द्वारा मजबूत रहा हूँ। तुम अनुभवित साथियों के जवान पुरोहिति के रखने वाले के तैयारी में आशीर्वाद दे सकते हो जबकि तुम उसे उसी तरह के विश्वास को दिख लेंगे। यह तुम्हें मदद करेंगे खुद के लिए प्रेरणा भरे एहसास को विश्वास करने में जब वो किसी दिन एक बच्चे को अच्छा होने के लिए। उस विश्वास ने मुझे एक बार से ज़्यादा मदद किया है। हमारे सफलता दूसरों को स्पर्धों की तैयारी में आगे आएगा कि हम उन्हें कितना प्रेम करते हैं। उस समय के लिए सोचो जब एक आरोनिक पुरोहितों को रखने वाले एक धर्म सिद्धांत को करने में गलती को करता है यह एक गंभीर समस्या है। कभी कभी गलती की सजा जनता द्वारा जरूर होना चाहिए। नखुशी अपमान के एहसास के साथ और खर्च करने से तुम प्रभु के सलाह को याद करोगे। गंभीरता से सलाह देना चाहिए जब पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरणा मिले और फिर बाद में उसे ज्यादा प्रेम करो जिसके तुम्हें निंदा किया है ताकि वो विरोध की तरह ना दिखने। शब्द बढ़ती का एक खास मतलब है पुरोहिति को रखने वाले की तैयारी में जब उन्होंने सुंदर की जरूरत है। जो दिखलाना है वो जरूरी है। हमें से जो पुरोहिति को रखने की तैयारी कर रहे हैं हमें गलतियों को करते हुए देखेंगे। तुम्हें उन्हें सुधारने से पहले उन्होंने तुम्हारे प्रेम को जल्द और तुरंत की एहसास किया होगा। प्रभु खुद कहता है कि छोटे पुरोहित रखने वाले उनके प्रति अपने क्षमता का सम्मान करते हैं और मूल्य देते हैं। इसको सुनो मेरे प्यारे साथियों, तुम्हारे ऊपर मसीह का नाम से मैं एरन की पुरोहिति के देखता हूँ जो देवदूतों की देखभाल करने के चाबियां रखते हैं और पश्चाताप के सुसमाचार को और पापों से मुक्ति के बाद बपतिस्मा के लिए और यह दोबारा कभी धरती से वापस नहीं लिया जाएगा जब तक ही लेवाई के पुत्र दोबारा प्रभु को सच्चाई की भेंट नहीं देते। एरोनिक पुरोहित बड़े मलकजदीक पुरोहितों के एक और भाग है। सभी पुरोहिति के प्रधान के तरह गिरजाघर के प्रधान तैयारी करने वाले पुरोहिति के भी संचालन करते हैं। सालों से उसका संदेश है कि दूसरों के जीवन में पश्चाताप के सुसमाचार और बपतिस्मा को लेने से सभी बचा हो सकता है। डीकन का परिषद शिक्षा है और पादरी हमेशा सलाह करते हैं सबसे परिषद के सदस्यों को प्रभु तक पहुंचाने के लिए। अधिकताएं सदस्यों को विश्वास और प्रेम के साथ आगे बढ़ने का बतलाते हैं। डीकन प्रभु बोझ को शांत और विश्वास के साथ देते हैं। शिक्षाओं और पादरियों अपने साथियों का साथ प्रार्थना करो कि गिरजाघर के एक व्यक्ति के बाद एक का पूरी तरह से देखभाल करोगे और वो साथियों साथ में प्रार्थना करते हैं परिवारों के मुखियों के जरूरतों और आशों को सीखने के बाद। ऐसा करने से वो महान दिन के लिए तैयार रहते हैं है जब वे अपने खुद के परिवार में पिता की तरह मैं यह गवाही देता हूं कि सभी जो प्रेरितों के साथ मिलकर सेवा कर रहे हैं प्रभु को उनके गिरजाघर में अपने के लिए तैयारी कर रहे हैं। परमेश्वर जीवित है, मैं जानता हूं कि यीशु मसीह है और वो हमें प्रेम करता है। प्रधान थॉमस एस मानसन प्रभु के जीवित भविष्यवक्ता है। मैं यह गवाही यीशु मसीह के नाम से देता हूँ। आमीन।
Brethren, we are grateful for your attendance this evening. We likewise thank the missionary choir for the inspiring music they have provided.
भाइयो, हम आभारी हैं इस क्वायर आपके उपस्थित के लिए आभारी हैं, और हम प्रचारक गायक मंडली जो धन्यवाद देते हैं प्रेम भरे संगीत प्रदान करने के लिए। इस सभा का अंतिम भाषण करता होंगे हमारे प्रिय भविष्यवक्ता प्रधान थॉमस एस मानसन। उनके टिप्पणियों के बाद गायक मंडली सभा के अंत करेगी। Elders of Israel, Gakar. Pratna Tab James B. Martino, jo sattar ke hai, dwara diya jayega.
Brethren, we're assembled as a mighty
body. हम प्रिस्टुड की महान एकता में इकट्ठा हुए हैं, दोनों यहाँ सम्मेलन केंद्र और दुनिया भर के स्थानों पर। मैं आभारी हूँ अपने जिम्मेदारी के लिए विनम्र होकर तुम्हें कुछ बातों को बतलाने में। मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु की आत्मा मेरे साथ हो जबकि मैं ऐसा करूँ। 75 साल पहले 1939 फरवरी 14 को जर्मनी हमबर्ग में एक पब्लिक हॉलीडे मना रहे थे। दया भरे भाषणों के द्वारा उत्साहिक भीड़ देशभक्त गाना गा रहे थे। नया जंकी जहाज बिस्मार्क को नदी एल्ब में पहली बार उठाया गया था। यह सबसे शक्तिशाली जहाज पानी पर एक असाधारण खवाज और मशीन का परिचय था। निर्माण के लिए 380 मिलीमीटर तक 57,000 ब्लू प्रिंट्स, 3 गुना खलाश रेडार समेत बंदूक की जरूरत था। जहां में 2800 माइल्स के बिजली सर्किट थे या 35,000 टन से ज्यादा, और के खवाज प्लेट में महान सुरक्षा प्रदान किया था। देखने में आलीशान आकर में विशाल बताया गया था। बिस्मार्क को मिलने का समय 2 साल से भी ज्यादा के बाद मुखर हुआ था, जब 24 मई 1944 में ब्रिटिश नेवी को 2 शक्तिशाली लड़ाई के जहाज द प्रिंस ऑफ वेल्स और हुड के लड़ाई में बिस्मार्क और जर्मनी क्रूजर्स प्रिंस एन शामिल थे। दूसरे ब्रिटिश लड़ाई वाले जहाज द प्रिंस ऑफ वेल्स को बहुत नुकसान हुआ, वापस चला गया। 3 दिनों बाद बिस्मार्क दोबारा फिर लड़ाई पर निकला। इस बार ब्रिटिश के 4 लड़ाई वाले जहाज से और हवाई जहाज से कुछ मिलकर ब्रिटिश ने 5 लड़ाई वाले जहाज, 2 प्लेने 11 छोटे और 21 तेजी से लड़ने वाला जहाज का इस्तेमाल किया। तरवार बिस्मार्क को ढूंढने वाले इन लड़ाइयों के द्वारा कई मिसले को बिस्मार्क पर छोड़े केवल कुछ भी भारी नुकसान पहुंचा था, वहां डूबा था। फिर टोबेटो ने एक सफल घोर मिला जिसमें बिस्मार्क के रडर को बंद कर दिया। उसे बनाना नामुमकिन था। बंदूकें चलने को तैयार थी और चलने वाले तैयार थे। बिस्मार्क सिर्फ धीरे गोल में चल सकता था। कुछ ही दूरी पर शक्तिशाली जर्मन हवाई जहाज था। बिस्मार्क देश का फाटक पर तक नहीं पहुंच पाया। वे सुरक्षा का स्थान नहीं प्रदान कर पाए क्योंकि बिस्मार्क ने योजना भरे चलने का चमत्कार दिया था। रडर नहीं था, मदद नहीं मिल रहा, फाटक तक नहीं पहुंचा था, उसका अंत नजदीक था। ब्रिटिश बंदूकें ने प्रज्वलित किया जबकि जर्मन डर ने बर्दाश्त का कर दिया और एक मजबूत जहाज को डुबा दिया। अटलांटिक के भूखे लहरों ने ऐसा किया। बिस्मार्क अब नहीं था। बिस्मार्क की तरह हम सब भी इमेजिनरी के चमत्कार हैं। हमारी रचना फिर भी आसान के चमता में नहीं थे। इंसान बहुत ही मुश्किल के मशीन को बना सकता है, परंतु उसमें जहाँ नहीं डल सकता या उसमें कारण और परिणाम की शक्ति नहीं दे सकता, ये दिव्य उपहार है, सिर्फ परमेश्वर द्वारा बनाया जा सकता है। जहाज की जरूरी रडर की तरह भाइयों हमें रास्ता दिया गया है जिस पर हमें चलना है। प्रभु की रोशनी घर संकेत कर रहा है हम सबको, जबकि हम जीवन की समुद्र में तैर रहे हैं। हमारा कार्य है कि हम सीधे अपनी मंजिल की ओर बढ़े, परमेश्वर की सेलेस्टियल राज्य की ओर। एक इंसान उसी तरह नहीं जैसे बिना रडर के जहाज कभी घर के फाटक तक नहीं पहुँचेंगे। हम चिन्ह मिलती है कि मार्ग बनाओ और जहाँ किस ओर जहाँ है अपने मंजिल तक के लिए तैयार करो, अपने घूमो और आगे बढ़ो। तैयार बिस्मक की तरह यहाँ इंसान के साथ भी है। इंजन और पहियों की शक्ति बेकार है बिना मार्गदर्शन की। उस शक्ति के इस्तेमाल मार्गदर्शन पर चलने की शक्ति की दिशा दिखलाई नहीं देता। छोटे आकार में परंतु बहुत ही काम है। हमारे पिता ने सूरज, चांद और तारों को बनाया है, स्वर्ग की गैलेक्सीज को, मछुओं को मार्ग दिखलाने के लिए जो समुद्र में तैरते हैं। हमारे लिए जब हम जीवन के मार्ग पर चलेंगे, वह साफ तौर से मार्ग दिखलाता है और उसी ओर इशारा करता है जहां हमें जाना है। वह सतर्क तरह है, चक्कर खतरों चल से बचो। हम अपने आप को उनसे धोखा नहीं देखने देंगे जो हमें गुमराह करते हैं। वे चतुर पाप से लुभाने वाला रंग बिगड़ती चीज़ों से बचो, बल्कि हमें प्रार्थना करना चाहिए। हमें छोटे सरल आवाज़ को सुनना चाहिए जो हमारे आत्मा के अंत तक बतलाता है स्वामी के दयाभारी निमंत्रण को, आओ मेरे पीछे हो लो। फिर भी यहाँ कई है जो सुनते नहीं हैं, जो आज्ञा का पालन नहीं करते, जो खुद के बनाए हुए मार्ग पर चलते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा भूखे बहकावे से गुजरना पड़ता है जो हम सब के इर्द गिर्द और जो बहुत खतरनाक हो सकता है। प्रस्तुत की रखने वालों, हमें दुनिया में मुश्किलों के समय रखा गया है। हम इस मुसीबत भरे दुनिया में जहां सभी और झगड़ों की बौछार है में रहते हैं। राजनीति के खेल देश को बर्बाद कर रहा है, निर्देश शक्ति को पकड़ रहे हैं और संगठनों के खंड टूट रहे हैं। अवसर से महारूम और असफलता के एहसास से चले जाते हैं इंसान के सुझाव करने के लिए। हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारे स्वर्ग के पिता के महान आशीर्वाद को जो उसने हमें दिया है लायक रहे। जहाँ कहीं भी हम जाए, हमारे पृष्ठ हमारे साथ होता है। क्या हम पवित्र स्थान पर रहते हैं? कृपा जब तुम खुद को और अपने पृष्ठ को करते स्थान में रखते हो या उन गतिविधियों में भाग लेने से जो तुम्हारे लायक नहीं या उस तरह की जिसमें मुसीबतें हो पड़ते हैं। हम जो प्रस्तुत के रखने वाले की तरह नियुक्त हुए हैं बदलाव ला सकते हैं। जब हम अपने आप को शुद्ध रखते हैं और प्रस्तुत की इजाज़त रखते हैं, हम दूसरों के लिए सभी उदाहरण होते हैं करने के लिए। देवदूत पॉल ने बताया, प्रवचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्र में विश्वासियों के लिए आदेश बन जा। उसने यह भी लिखा कि मसीह के पीछे चलना वजले वालों को दुनिया की रोशनी की तरह बनना चाहिए। सच्चाई की उदाहरण को देने से बुराई से भरे दुनिया में सच्चाई प्राप्त कर सकते। तुम इस कई प्रधान एल्डर ट्रेनर को जानते हो जिसने चार गिरजाघर के अध्यक्ष के सलाहकार की तरह सेवा की है। उसने सच्चाई के उदाहरण से सीधा उसके काम के व्यवहार पर था कनाडा के सरकार की सेवा के दौरान, और यीशु मसीह के देवता की तरह उसने हमें ये प्रेरित किया है सुसमाचार के शिक्षण को, जिसने जिसने से ज्यादा खुशी और सफलता कुछ भी नहीं देगा। एक उदाहरण बनो, अच्छाई के लिए प्रभाव डालो। उसने आगे कहा, हम सभी को कुछ कार्य प्राप्त हुआ है, परमेश्वर चुने हुए सेवक की तरह, जिसे उसने कभी काबिल समझा है, उसके नाम में प्रस्तुत और करने की शक्ति में। हमेशा याद रखो कि लोग तुम्हें नेता की तरह देखते हैं और तुम व्यक्तिगत के जीवन में प्रभाव डालते हो, चाहे अच्छा या बुरा, जो आने वाले पीढ़ियों पर प्रभाव डाल सकता है। हमें सच्चाई से शक्ति प्राप्त होती है कि आज दुनिया में परमेश्वर के शक्ति सबसे बड़ी है जब वह इंसान के बीच काम करता है। मरणशीलता के जीवन में सुरक्षित ढंग से सफर, हमें आनंद नाविक की मार्गदर्शन की जरूरत है, महान यहोवा की भी। हम मदद के लिए पुकारते हैं, हम स्वर्ग की पुकारते हैं, स्वर्ग की मदद के लिए। एक जहां मानद उदाहरण जो ऊपर नहीं पहुंचा था, वो केन, एडम और ईव का पुत्र था। शक्ति में बलवान परंतु कार्य में कमजोर। केन भूखा, जरंतुआ, आज्ञा ना मानने वाला, को आज्ञा देने वाला बन गया था, और कातल करने वाला, चुकर जो खुद दिया जो उसे सुरक्षित और मुक्ति देता। केन ने स्वर्ग के चीजों से ज्यादा दुनिया की प्रेम किया। केन गिर गया था दूसरे समय पर, और एक दुष्ट राजा था के द्वारा परमेश्वर के एक सेवक को निरक्षित किया गया था। स्वर्ग से प्रेरणा को प्राप्त करके डेनियल ने राजा को लिया के लिए दीवार पर लिखे हुए थे समझाया, इनाम जो उसे प्राप्त हुआ था, जो देखकर वंशरोब, एक सोने का चैन। और डेनियल ने कहा, अपने दान अपने ही पास रख। बहुत और ऐसी शक्ति डेनियल को देने चाहती है, दुनियादारी की चीजों को और परमेश्वर का नहीं। डेनियल ने इनकार किया और विश्वास बना रहा। बाद में डेनियल ने परमेश्वर की भक्ति भी, भले ही या तय हुआ था कि ऐसा नहीं किया जा सकता, उसे घंटे में शेरों की के साथ फेंक दिया गया था। बाइबल में लिखा हुआ था, डेनियल को घड़े में से निकाला गया और उसे उस पर हानि का कोई चिन्ह नहीं पाया गया था, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास करता। खतरे के जरूरत के समय में डेनियल का विश्वास रहना का कार्य ने देवजे बचाव किया और सुरक्षा का शरण दिया। इस तरह का बचाव और सुरक्षा हमारा हो सकता है जब हम अपने जीवन का घड़ी को अंत घर को ओर ले जाएंगे। इतिहास के समय बालू घड़ी की रेत की तरह समय के रास्ते पर चलो। नए डल की खिलाड़ियों ने जीवन के समय भी हमारे दिन की मुसीबतें हमें धराते हैं। दुनिया भर के इतिहास में शैतान ने परमेश्वर के चेलों को मुसीबत देने के लिए हमेशा किया है। अगर हम उससे के बहकावे में पड़ जाते हैं, हमें ताकतवर बिस्मे की तरह रडर को खो देते हैं, बल्कि भले ही हमारे पास इंसान निमुक्त पुत्ता का बनावट हो, हमारे स्वर्ग का पिता हमारे सच्चे आज्ञा को कभी जवाब दिए बगैर नहीं रहेंगे। जब हम स्वर्ग की मदद चाहते हैं, हमारा रडर बिस्मक की तरह नहीं होगा, कभी टूटेगा नहीं। जब हम अपने खुद के सफर की शुरुआत करें हैं, हम जीवन के समुद्र में सुरक्षित रहें। हमारे पास डेनियल जैसा शक्ति हो ताकि पाप के और हमारे इर्द गिर्द के बहकावे के बावजूद हम सच्चे और विश्वासी रहे। हमारी गवाही जैकब की तरह शक्तिशाली और मजबूत रहे। निफाय के भाई जो जब उस आदमी जो उसके सामने सभी तरीकों को आजमाया था, वह अपने विश्वास से देख नहीं सकता था। विश्वास के रडर के साथ हमारे मर्ग पर मार्गदर्शन दिखाई है। भाइयों हम भी घर ले जाए परमेश्वर के घर की ओर उसके साथ हमेशा के लिए, ताकि यह हम सब के लिए हो मसीह यीशु मसीह के हमारे उद्धारकर्ता और मुक्तिगाता के नाम से प्रार्थना करता हूँ। आमेन।
Farewell, we're going to the mountain. Father in heaven,
पिता परमेश्वर, हम नम्रता से आपके सामने आते हैं प्रिस्टुड की एकता में, और आपको आपसे आभारी है हमारे भविष्यवक्ता के लिए और जिनको हमने हाथ उठाकर सस्टेन किया है अपने भविष्यवक्ता के लिए. हमारा हृदय को खुशी मिला है कि जैसे हम यहाँ से निकले कि हम एकता से कार्य करें एरोनिक और प्रिस्टुड प्रिस्टुड साथ, कि हम आगे चले और आपके काम की सेवा में लगे रहे, अपने भाई और बहनों को से सहायता करें और कि हम और एकता से प्रिस्टुड में आपके कार्य का आगे बढ़ाएं, कि जैसे हम सच्चाई से आपके आगे का पालन करें और स्थान पर आपके सही सच्चाई के स्थान पर रहे और कि हम आपके कार्य करते रहे आपके राज्य को बढ़ाएं. और हम आभारी है हमारे मिशनरीज के लिए जो दुनिया भर में है, कि हम उनके साथ एकता रहे और कि आपके काम जो अब सफलता से आगे बढ़ रही है उसमें हम कार्य कर रहे हैं. हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आपके पुत्र के से बहुत आभारी है जिसने हमें रास्ता दिखलाया है. हम चाहते हैं कि आप हमें प्रार्थना करते हैं कि हमारे साथ रहें, कि हम जब कुछ भी करें और कि जब कि हम यहाँ से निकले आज, कि हम आगे बढ़ें हृदय में, कि हम मजबूत रहे. यीशु मसीह के नाम से आमीन.